नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में भी HPV टीकाकरण अभियान के लिए तैयारियां पूरी, 155 टीकाकरण केंद्र चिन्हित। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की, 20 पंजीकरण काउंटर लगाए जाएंगे। देहरादून जिला प्रशासन ने जनगणना 2027 की तैयारियां की शुरू और पौड़ी गढ़वाल के बिलखेत में आयोजित नयार वैली फेस्टिवल के दूसरे दिन आज साहसिक गतिविधियों की शानदार शुरुआत। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रागिनी बिंजोला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने राज्य भर में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV वैक्सीनेशन अभियान के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। पहले चरण में प्रदेश की चिकित्सा इकाइयों में 155 टीकाकरण केंद्र चिन्हित किए गए हैं, जहां 14 वर्ष की सभी पात्र बालिकाओं को निःशुल्क टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि महिलाओं में होने वाला गर्भाशय ग्रीवा सर्वाइकल कैंसर अब लाइलाज नहीं है। उन्होंने कहा कि इस गंभीर बीमारी की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अजमेर से करेंगे।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अभियान के तहत 14 वर्ष आयु वर्ग की 100% बालिकाओं को निशुल्क HPV टीका लगाया जाएगा। अब तक यह टीका निजी अस्पतालों में लगभग 4000 रुपए प्रति डोज की कीमत पर उपलब्ध था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से इसे पात्र बालिकाओं के लिए पूरी तरह निशुल्क किया गया है। उन्होंने बताया कि टीकाकरण कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए प्रदेश भर के सभी जिला और ब्लॉक स्तर पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डॉक्टरों, नर्सों, ANM, आशा कार्यकर्ताओं और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। वैक्सीन की उपलब्धता, कोल्ड चेन व्यवस्था और रिपोर्टिंग सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि टीकाकरण सुरक्षित, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। डॉक्टर रावत ने अभिभावकों, शिक्षकों, स्कूल प्रबंधन समितियों, पंचायत प्रतिनिधियों, महिला समूहों और समाज के जागरूक नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं और हर पात्र बालिका का टीकाकरण सुनिश्चित करें। साथ ही सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रदेश की प्रत्येक बेटी इस महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच का लाभ उठा सके। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से जयवीर सिंह।
आगामी चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए हरिद्वार जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस संबंध में कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में यात्रा व्यवस्थाओं से जुड़ी विभिन्न विभागों की कार्य योजना की विस्तार से समीक्षा की गई। जिला पर्यटन विकास अधिकारी सुशील नौटियाल ने बताया कि तीर्थयात्रियों का पंजीकरण ऋषिकुल मैदान में किया जाएगा। इसके लिए 20 पंजीकरण काउंटर स्थापित किए जाएंगे, जहां शिफ्टवार ड्यूटी लगाई जाएगी। पंजीकरण केंद्र प्रतिदिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक संचालित रहेंगे। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने चारधाम यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और भीड़ नियंत्रण के लिए प्रभावी डायवर्जन प्लान तैयार करने के पुलिस विभाग को निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों को भी यात्रा के सुव्यवस्थित संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
आगामी चारधाम यात्रा हमारी अप्रैल माह में शुरू होने जा रही है, और क्योंकि हरिद्वार उसका प्रथम और मुख्य पड़ाव है, उसी के क्रम में सभी डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग की गई, जिसमें कि पर्यटन विभाग, पेयजल, स्वास्थ्य, पुलिस आदि डिपार्टमेंट के साथ क्या क्या उनके रोल रहेंगे, पिछली यात्राओं के क्या एक्सपीरियंस रहे हैं और कैसे हम यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए और साथ ही हरिद्वार निवासियों के लिए और बेहतर यात्रा कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा की।
अल्मोड़ा के चौबटिया में भारत और जापान का संयुक्त सैन्याभ्यास धर्मा गार्डियन जारी है। 24 फरवरी से शुरू हुआ ये सैन्याभ्यास 9 मार्च तक चलेगा। भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के संयुक्त युद्धाभ्यास में दोनों देशों के 120-120 सैनिक भाग ले रहे हैं। इसमें जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स का प्रतिनिधित्व 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के जवान कर रहे हैं, जबकि भारतीय सेना की टुकड़ी लद्दाख स्काउट से है। ये युद्धाभ्यास बारी बारी से भारत और जापान में आयोजित किया जाता है और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसके तहत दोनों देशों के सैनिक उच्च स्तर की शारीरिक क्षमता विकसित करेंगे और संयुक्त योजना प्रक्रिया को बेहतर बनाएंगे। इस दौरान सामरिक ड्रिल्स के बीच तालमेल स्थापित कर आधुनिक तकनीक और इंटर ऑपरेबिलिटी पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। वहीं युद्धाभ्यास के दौरान क्षेत्रीय जनता के आवागमन को सुदृढ़ बनाने के लिए क्षेत्रीय पुलिस बल भी पूरी तरह मुस्तैद है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
देहरादून जिला प्रशासन ने जनगणना 2027 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए जनगणना से जुड़े कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जनगणना 2027 दो चरणों में संपन्न की जाएगी। पहला चरण आगामी 25 अप्रैल से 24 मई तक संचालित होगा, जिसके अंतर्गत मकान सूचीकरण और भवन गणना की जाएगी। दूसरा चरण अगले साल 9 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित होगा, जिसमें नागरिकों की गणना का कार्य संपादित किया जाएगा। इसके अलावा आगामी 10 अप्रैल से 24 अप्रैल तक स्वगणना की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत परिवार पहली बार वेब पोर्टल के माध्यम से स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे, जिसका सत्यापन प्रगणक द्वारा किया जाएगा। वहीं देहरादून की नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया, मकानों की गणना के लिए कार्मिकों के प्रशिक्षण का कार्य शुरू हो चुका है। इस बार मकानों के सूचीकरण और जनगणना के लिए डिजिटल तकनीकी का भी उपयोग किया जा रहा है।
ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है और जनगणना के लिए जो फर्स्ट जो सेंसस हाउसेस का काउंट लिया जाना है, उसके लिए भी जो भी समस्त हमें आवश्यकता है मैन पावर की और उन सारे की, उनका आकलन करते हुए व्यवस्था बनाई जा रही है। समय समय पर जैसे जैसे निर्देश मिलेंगे उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस संबंध में जो टीम है उसमें पूरी तरह से सभी नोडल ऑफिसर्स को ब्रीफ कर दिया गया है और उनके द्वारा जो भी क्वेश्चंस और क्वेरीज रेज की गई थी उनका भी समाधान कर दिया गया है।
पौड़ी गढ़वाल के बिलखेत में आयोजित 3 दिवसीय नयार वैली फेस्टिवल के दूसरे दिन आज सुबह से ही साहसिक गतिविधियों की शानदार शुरुआत के साथ पूरी घाटी ऊर्जा और उमंग से सरोबार नजर आई। आसमान में हॉट एयर बैलून, पैरामोटरिंग और टेंडम पैराग्लाइडिंग ने रंगीन छटा बिखेरी। साथ ही एंगलिंग, कयाकिंग और एडवेंचर जोन में युवाओं और पर्यटकों की खासी भीड़ उमड़ी। नयार घाटी के मनोरम दृश्य प्रतिभागियों और पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। साहसिक खेलों की इन गतिविधियों ने आयोजन को नई ऊर्जा प्रदान करते हुए इसे और अधिक आकर्षक व जीवंत बना दिया है। बागेश्वर में सांस्कृतिक रंगों और उत्साह के साथ पुरुष होली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता से पहले पूरे जिलों से आई सभी टीमें पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ होली गायन करते हुए शोभा यात्रा के रूप में बागेश्वर मंदिर पहुंची, जहां मुख्य प्रतियोगिता आयोजित की गई। मंदिर परिसर में बैठकी और खड़ी होली की मधुर प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम संयोजक कवि जोशी ने बताया कि पुरुष होली कुमाऊं अंचल की विशिष्ट पहचान है और इस तरह के कार्यक्रम सामाजिक एकता को मजबूत करते हैं।
कई सालों से हम यहाँ पर पुरुष होली महोत्सव, जो कि कुमाऊं में लगभग विलुप्त होते जा रही है, उस महोत्सव को प्रोत्साहित करने के लिए ही, उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर प्रतियोगिता के रूप में इसको करवाते हैं, जिसमें दर्जनों प्रतिभागी टीम यहाँ पर पहुंचती है। कंचू घाटी है हमारी, कमसार घाटी है, दानपुर घाटी है, इन सभी घाटियों से यहाँ पर प्रतिभागी टीम यहाँ पर पहुंचती है और भव्य रूप से यहाँ पर इस कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें प्राइज मनी के साथ साथ ट्रॉफी का भी हम यहाँ पर ट्रॉफी प्रदान करते हैं तीनों टीमों को, और साथ साथ आने वाली टीम में इस जो हमारी परंपरा चली आ रही है उसको आगे बढ़ाया जाए और भविष्य में भी इसको जीवित रखा जा सके, यही हमारा प्रयास है।
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDA की ओर से प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में देहरादून की आजाद कॉलोनी क्षेत्र में किए जा रहे अवैध व्यावसायिक निर्माण पर कार्रवाई करते हुए प्राधिकरण ने भवन को सील कर दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भी HPV टीकाकरण अभियान के लिए तैयारियां पूरी, 155 टीकाकरण केंद्र चिन्हित। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। 20 पंजीकरण काउंटर लगाए जाएंगे। देहरादून जिला प्रशासन ने जनगणना 2027 की तैयारियां की शुरू और पौड़ी गढ़वाल के बिलखेत में आयोजित नयार वैली फेस्टिवल के दूसरे दिन आज साहसिक गतिविधियों की शानदार शुरुआत। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।